میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مسلمان اپنی اسپریچولیٹی کو پانے اور اس کو بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے کہ میرے اندر ایک اسپریچولیٹی پیدا ہو اور میں اپنے دل میں، اپنے ہارٹ میں، اپنے مائنڈ میں ایک سکون محسوس کروں اور ایک پیسفل انداز ہو میرا۔ اس کے لیے جو بہترین اس کا طریقہ کار ہے یا اس کو پانے کا جو بہترین طریقہ ہے، ذریعہ ہے، وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں آپ کی زندگی کی آسانیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، دشواریاں شروع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں، اسکول میں تھے تو اسکول میں مزہ نہیں آتا تھا کہ اسکول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، جب کالج جاتے ہیں تو پھر اسکول یاد آتی ہے کہ اسکول ہی صحیح تھی، اور جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو دل کہتا ہے یار کالج کا زمانہ صحیح تھا، یونیورسٹی میں تو بڑا پرابلم ہے، اور جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو دل کرتا ہے یار اسٹوڈنٹ ہی رہتے تو صحیح تھا۔ یہ پریکٹیکل لائف بہت پریشان کرتی ہے کیونکہ زندگی یہ انہی دور سے گزار گزار کر ہی بندہ موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، مگر ان تمام تر صورتوں میں، تمام تر صورتحال میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں پیسفل رہوں، پور سکون رہوں، آسانی رہے دل و دماغ پر، میرے سکون طاری رہے اور میں اللہ پاک کا قرب حاصل کروں، اللہ پاک کے قریب ہوں، اس کی رحمت کے قریب ہوں، تو تمام ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیلی کا کوئی فیگر فکس کر لیں کہ میں روز کے اتنے درود شریف پڑھوں گا، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس قدر اسپریچولیٹی ملے گی، آپ نماز میں اٹھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا، گناہوں سے بچنے کی پاور ملے گی، کیونکہ بہت سارے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ کر جئیں لیکن نہیں جی پاتے، ہمیں پریشانیاں بہت ہو رہی ہوتی ہیں، نہ آنکھ قابو آتی ہے، نہ مطلب بہت پرابلم ہے۔ تو بہترین ایزی اور شارٹ کٹ وے جو ہے اسپریچولیٹی حاصل کرنے کا، اسپریچول پاور حاصل کرنے کا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار وہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہماری دور ہو جاتی ہے، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے یار کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا، یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے، ارے چھوڑو یار، فورگیٹ اٹ بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ اللہ پاک قرآن پاک کو فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، ہاں سمجھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کسی بھی گلاس کے اندر پانی ڈالیں اور اس کے نیچے سے آپ سوراخ کر دیں تو پانی اس میں تو نہیں جائے گا، पानी वेस्ट हो जाएगा। तो कभी भी समझाने से पहले या समझाते हुए एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी एग्रेसिव होकर समझाएंगे या उसको डिस्करेज करके समझाएंगे या उसके अंदर वैसे ही मतलब कि वो कमजोरियां निकालते रहेंगे तो डेफिनेटली उसको समझने में वो इजी नहीं रहेगा, वो उसको काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार ये क्यों मुझे इस तरह समझा रहा है। यानी समटाइम समझने वाला जिसको आप समझा रहे होते हैं वो आपकी वर्डिंग को छोड़कर आपके एटीट्यूड और आपकी बॉडी लैंग्वेज में चला जाता है। तो उसके कान आपको सुन कान में आवाज आ रही होती है मगर उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि आप दिमाग में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। इसको क्या हो गया, पागल पागल हो गया है, इतना एग्रेसिवली समझा रहा है, इतना डांट कर समझा रहा है। इसको समझाने का तरीका होता है, यानी आप उसका साउंड आपके कान में जा रहा होगा मगर उसकी बात आपके दिमाग में आ रही होगी ना दिल में आ रही है क्योंकि आप तो उसकी उस एग्रेसिव जो इसका स्टाइल है उसी में खो गए। तो समझाने के तरीके होते हैं। दोस्तों को भी अगर आप समझाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कितने दुरूद पाक की नियत की, 1200। मैंने नियत से पहले आपको दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत बताई, इसकी इंपॉर्टेंस बताई, आपको लगा कि यार ये बड़ी काम की चीज है। अब मैंने आपको कहा कि आप इंटेंशन करें तो आपने इमीडिएटली इंटेंशन कर लिया ना। तो किसी चीज की इंपॉर्टेंस बताना होता है, उसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसके लॉसेस बताने होते हैं। तो एक इंसान अपनी अक्ल के हिसाब से सोचता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको तो मुझे अवेल करना चाहिए। तो जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुना माफ करता है, उसके 10 दर्जे बुलंद करता है। अब आप हैं स्टूडेंट, आई डोंट नो कि आपके लिए इजी है या नहीं है, इसको क्या कहते हैं काउंटर, इतनी सी उंगली में आ जाता है। अगर ये हाथ में होता है उंगली में होगा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो कोई ये दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके मुंह पर रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है। अब आई डोंट नो कि आपके लिए ये फिंगर में ये रखना आसान है या नहीं है, लोग क्वेश्चन तो करेंगे भाई। तो अब ये रखने में फायदा है, जब मैं आ रहा था यहाँ बर्मिंगम, मेरी फ्लाइट थी दुबई से बर्मिंगम, तो मुझे प्यास लगी ना इन फ्लाइट, तो मैं उठकर गया और केबिन क्रू जो था मेल से बात की, फीमेल से नहीं बात की, तो वो मेल था तो मैं उसको कहा कि पानी पीना है ना कोल्ड नहीं, उसने कहा नहीं रूम टेम्परेचर वाला देंगे, ठीक है दो। उसने वॉर किया और मुझे गिलास दिया, अल्हम्दुलिल्लाह करके मैं खड़ा हुआ पानी पीकर उसको मैंने गिलास वापस किया, तो मैं समझ गया था कि वो अब क्वेश्चन करेगा। तो उसने मुझसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन किया कि तुमने बैठकर पानी क्यों पिया, व्हाई यू सीट। तो फिर मैंने उसको बताया कि दिस इज अ वे ऑफ अवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जब उसका इंट्रोडक्शन लिया तो वो मुसलमान नहीं था। अच्छा आप कमाल देखिए कि जब मैंने उसको कहा तो उसने मुझसे डायरेक्टली पूछा हु, तो मैंने उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई एक दो बातें बयान की। अब उसको वो बिल्कुल एक क्वेश्चन मोड में ही चला चुका जा चुका था। तो मैंने कहा कि दिस इज आई वेयर दिस टर्बन, दिस इज अ वे ऑफ अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस इज अ वे ऑफ अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं इसको चंद बातें, वो खुश हो रहा था, उसको मजा आ रहा था ना। अब मैं अगर उसके सामने बैठकर पानी ना पीता तो क्या वो मुझसे क्वेश्चन करता, अगर वो मुझसे क्वेश्चन ना करता तो क्या मैं उसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ बयान कर पाता, नहीं। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया, मुझे अल्लाह की रहमत से उसे इस्लाम और दीन की दावत देने और उसे अच्छी बात बताने का मौका मिला। अगर आप अपने हाथ में ये फिंगर काउंटर रखते हैं, ये दिस इज नॉट माई बिजनेस, हाँ आप बोले इसका लगता है बिजनेस है, बाहर काउंटर का शॉप लगा हुआ, ये कि प्लीज बाय दिस इज नॉट माई बिजनेस, ये मेरा कारोबार नहीं है। तो मैं ये जस्ट एक तरगीब है आपको, लोग मोटिवेशन दे ही रहे ना आजकल, पैसे वाला बनने की मोटिवेशन मिलती है, क्या कहते हैं बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, दिस इज अवर गोल, कि मैं नेक आदमी कैसे बन सकता हूं, और नेक आदमी बनने का शॉर्टकट है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद इब्राहिम पर है, अफजल दुरूद है, और भी दुरूद पाक है, माशाल्लाह पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं दुरूद पाक पर। किसी ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना दुरूद पाक पढ़ूं और इतनी देर और औराद वज़ाइफ करूं, तो आपने फरमाया दुरुस्त है, मगर तुम दुरूद पाक और बढ़ाओगे तो और बेहतर हो जाएगा। आका मैं अब इतना दुरूद पाक पढ़ूं, इतने और औराद वज़ाइफ करूं तो बेहतर है? आका ने फरमाया बेहतर है, और बढ़ाओगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो यूं बातचीत हुई तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं पूरा दिन दुरूद पाक ही पढ़ता रहूंगा। आका ने फरमाया ये तेरे गमों को मिटाने के लिए काफी है। ये हम कर क्या रहे हैं? दुरूद पाक क्या है? ये अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह हमारे नबी पाक पर रहमत नाजिल फरमा। अच्छा, ये दुआ कबूल ही कबूल है जब हम दुआ करते हैं ना। जब भी हम दुआ करते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं जब भी दुआ करें शुरू में और आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक भी दुआ है। और जब ये वो दुआ है जो कबूल ही कबूल है, अल्लाह कबूल फरमाता है। जब दो कबूल दुआ के दरमियान तुम जो दुआ कर रहे हो ना, तो जब दो दुआएं कबूल को होंगी तो बीच की दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो हमेशा दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। तो बात चली थी फिंगर से, फिंगर काउंटर। तो अब अगर आप इसको लेते हैं और इसको उंगली में रखते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे, नॉन मुस्लिम भी पूछेगा आपसे, व्हाट इज दिस, व्हाई यू वेयर दिस काउंटर इन योर फिंगर, लाइक इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। तो आप उसको बताना कि मैं दुरूद पाक पढ़ता हूं। डेफिनेटली वो सेकंड क्वेश्चन करेगा, ये क्या होता है? तो मैंने चंद चीजें आपको भी बयान की, तो आप उसमें से कुछ चीजें उसको बयान करते, वो ये होता है। हो सकता है वो आपसे कहे कि क्या तुम्हें कोई सा फायदा हुआ, तो इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। आपने बताना मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे रोजाना पढ़ने की तौफीक मिल रही है। एक शख्स ने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गया, वो मस्जिद का इमाम था। कौन था? मस्जिद का इमाम था, अल्लाह की पनाह। और वो इस्लाम छोड़ दिया उसने, मस्जिद के इमाम ने इस्लाम छोड़ दिया। तो उसको किसी ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? नमाजियों ने कहा कि हम तो तेरे पीछे नमाज पढ़ते थे, तुझे क्या हुआ? बोला मतलब मैं यूं स्टडी कर रहा था तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं अब देखूं अल्लाह है या नहीं है, माज अल्लाह। तो मैंने बगैर वजू के नमाज पढ़ानी शुरू की कि मुझे कुछ होता है, और मैं कंटिन्यू नमाज पढ़ाता रहा बगैर वजू के तुम्हारी। और मैंने देखा इतने अरसे तक मैंने नमाज पढ़ाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहा? मुझे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई मुसीबत नहीं आई है। तो उसमें से एक नमाजी अकलमंद था, बोला तो बेवकूफ है कि तुझे कुछ भी नहीं हुआ। और क्या हुआ? बोला तेरा ईमान छीन लिया गया। वो शौक, उसको पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। यानी इसके साथ इतना बड़ा वाकया हो गया कि उसका बीमार क्या होता या इसका एक्सीडेंट क्या होता, उसके साथ तो वो हो गया कि अल्लाह ताला हम किसी मुसलमान के साथ ये करे ही नहीं, हो ही नहीं। उसका ईमान ही चला गया। बोला तेरे पर तो इतना बड़ा अजाब नाज़िल हुआ, तुझ पर तो इतनी बड़ी रब की नाराजगी जाहिर हो गई। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आ जाती है, मैं पता नहीं चलता। तो इसमें खूबियां भी आ जाती हैं, जैसे उसको तो बुराई लग गई ना, ऐसे खूबियां लग जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि पांच बुजुर्गों के इस तरह के इरशाद मिलते हैं कि पहली नमाज अल्लाह ताला की रहमत से, कि पहली नमाज से मुझे रब की रहमत मिली, इसका अंदाजा मुझे हो जाता है। तो उसने कहा कैसे? कहा अल्लाह ताला मुझे दूसरी नमाज की तौफीक दे देता है, अल्लाह पाक मुझे दूसरी नमाज की तौफीक दे देता है। हमने पढ़ा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इसका फायदा क्या हुआ? आपने पहली बार पढ़ा, अल्लाह ताला ने दूसरी बार पढ़ने की तौफीक दी, दूसरी बार पढ़ा, अल्लाह ने तीसरी बार भी पढ़ने की तौफीक दी है। आपको वाकई सुकून फील होगा। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको नींद आ जाएगी। आपको नेकी की तौफीक नहीं मिलती, नेकी की तौफीक हमें मिल जाएगी। तो ऑल टाइम इंशाअल्लाह ताला हम दुरूद पाक पढ़ते ही रहेंगे। आपको पता है दुरूद पाक पढ़ने वाले को रसूल पाक पहचानते हैं। जो दुरूद पाक पढ़ता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक पढ़ने वाले विथ हिज फादर नेम अर्ज किया जाता है, आका फलां बिन फलां है। آپ پر درود پاک پڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں, اور آقا فرماتے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ درود پڑتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں. صلی اللہ علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا خیال یہ کافی ہے. آپ کو لگا ہو یار ابھی تو بیان شروع کرے گا, لیکن میرا خیال ہے یہ بھی ایک پورا بیان ہے. تقریباً کے پاس ہیڈ فون ہوتا ہے تو کاؤنٹر رکھنے میں کیا پرابلم ہے؟ تقریباً کے پاس وہ ایئر پوڈس ہوتے ہیں, یہ رکھنے میں کوئی, یہ جب ایئر پوڈس لگا تو کوئی نہیں پوچھتا کیا کر رہے ہو, لیکن یہ پوچھیں گے. اچھا آپ رکھیں گے تو آپ دیکھ لینا, آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بہت سارے لوگ رکھیں گے. اب میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک پرابلم ہے رنگ پہننے کا. تقریباً نوجوان, آپ شاید نہیں پہنتے ہوں گے, اللہ کرے نہ پہنے, رنگ پہنتے ہیں, جسٹ اونلی رنگ. تو یہ رنگ جو ہے, جو رنگ ہے جس میں کوئی اسٹون نہیں ہے. کل بھی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ آپ نے جو پہنا ہے اس کو اتار دے, تو اس نے کہا سلور ہے. تو مجھے ان کی اس بات سے لگا کہ اس کو ایسا لگتا ہوگا کہ مجھے سلور میرے لیے الاؤ ہے, الاؤ نہیں ہے. مرد کو ایک رنگ الاؤ ہے, تو رنگ وتھ ون اسٹون سلور, اور ابھی سارے چار ماشے سے کم وہ ہے اس کا ویٹ. اتنے ویٹ کی سلور کی ایک رنگ وتھ ون اسٹون, یہ مرد کو الاؤ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی رنگ یا ایک سے زیادہ رنگ یا ایک سے زیادہ پتھر والی رنگ یا بریسلیٹ کڑا کسی بھی میٹل کا ہو, ایون وہ چین, پروہیبیٹڈ فار مین ان اسلام, مکمل طور پر یہ ناجائز ہے. مرد کو اس کے پہننے کی اجازت نہیں ہے. عورتیں پہن سکتی ہیں, مرد نہیں پہن سکتے. تو یہ کائنڈلی اس کو بھی آپ یاد کریں. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی میں یہ عادت ہے تو اس کو نکالے, اتار کر توبہ کر لے, اتار کر توبہ کر کے وہ گھر میں عورتوں کو دے دے. اگر عشق رسول کی ایک میں بات بتاتا ہوں, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ہی کوئی انگوٹھی پہنی تھی, ان کے علم میں نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی ان سے لی اور پھینک دی کہ یہ نہیں پہننا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ یہ آپ اٹھا لیں اور گھر میں کسی عورت کو دے دیں, اس کا کوئی اور استعمال کر لیں. مگر ان کا عشق رسول دیکھیے, کہتے ہیں کہ جس انگوٹھی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اب میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق رسول تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو چلیں ہاتھوں ہاتھ, یہ بھی بات میں نے آپ کو بتا دی. تو اب لوگ رنگ بھی پہنتے ہیں. اچھا یہ رنگ بھی ابھی اسی انگلی میں پہنتے ہیں. یہ تو مجھے ابھی وہ میں نے کہا تھا نا, وہ ایمبیسی میں گیا تو اس ایمبیسی والے, میرے یہاں فنگر میں تھوڑا سا وہ اسکن پرابلم تھا تو وہ فنگر پرنٹ آ نہیں رہا تھا. تو میں نے یہ کیا تو اس پہ بھی تھوڑا سا پرابلم تھا, تو مجھے وہ اندر سے کاؤنٹر میں کہا کہ وہ کیا انگیجمنٹ فنگر لگائیں. اب میں بولوں میری انگیجمنٹ فنگر کون سی ہے؟ میں تو شہادت کی انگلی جانتا ہوں, منگنی کی تو کوئی انگلی نہیں ہوتی. فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ یہ انگیجمنٹ فنگر اس کو بولتے ہیں. تو اب پھر اس سے میں نے وہ گیس کیا اور تھوڑا پتا چلا کہ اس کو انگیجمنٹ فنگر اس لیے بولتے ہیں کہ منگنی کی انگوٹھی اس میں پہنائی جاتی ہے. ارے میں چلے بھائی, اب وہ کیا انگوٹھی رنگ ہی ہوتی ہے تو ناجائز ہوتی ہے, جو پہناتی ہے وہ وائف تو نہیں ہوتی, اس سے تو انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ اسٹرینجر ہے, وہ غیر محرم ہے, وہ اجنبی عورت ہے, اس سے پہننا جائز بھی نہیں ہے نہ اس کو پہنانا جائز ہے, یہ دونوں بھی ناجائز ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلام و دین کی باتوں کو سمجھنا چاہیے اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے, اور اسی کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کاؤنٹر پہ گیا ہوٹل کے, تو وہاں ایک ینگ لڑکا کھڑا تھا. تو وہ کتاب میں لکھتا ہے اپنی کہ میں نے اس نوجوان سے جا کر کہا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے مجھے دیکھ کر کہا وٹ ڈو یو مین فار ایم, بولا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟
मकसद क्या होता है? नथिंग। फिर उसे क्वेश्चन नौजवान ने किया, क्या जिंदगी का भी कोई मकसद होता है? तो हमारे यहां ये प्रॉब्लम है कि हमारा कोई जिंदगी का प्रॉपर मकसद नहीं है। अच्छा, मकसद में हम जब बात करते हैं, जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं कि मकसद है, कैरियर प्लानिंग है हमारे पास। तो मैंने कैरियर प्लानिंग को भी पढ़ा है। अब अगर आपको मैं पूछूंगा कि कैरियर प्लानिंग क्या है, तो आप इसको गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके कैरियर प्लानिंग लिखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर प्लानिंग, व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ कैरियर प्लानिंग, एग्जांपल्स ऑफ कैरियर प्लानिंग, बहुत सारी चीजें आप लिखेंगे तो वो आपको वन वन करके देगा। गूगल पर ही आपको हर चीज मिल जाएगी। मिस्टर गूगल एक्टिव है हमारे लिए, ठीक है, नेवर स्लिप। जब भी इसको पूछो जवाब दे देगा, वो जवाब सही देगा गलत देगा इसका गारंटी नहीं है, मगर देगा जरूर जवाब कुछ ना कुछ। तो कैरियर प्लानिंग की बात जब उससे हम की कहते हैं तो वो एक डेफिनेशन हमारे सामने स्क्रीन पर ले आता है कैरियर प्लानिंग। तो उसमें इसका एक कंक्लूड ये है कैरियर प्लानिंग का, आप बहुत सारी इसकी मीनिंग, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे और हर जगह पर इसकी डिफरेंट डेफिनेशन होगी, लेकिन एक कंक्लूड जिसको कहते हैं कि खुलासा इसका ये होता है कि अपने अंदर एक ऐसी सलाहियतें पैदा करना या ऐसी तालीम हासिल करना जिससे मैं एक ईजी, कंफर्टेबल और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सको। ये कैरियर प्लानिंग की एक यूं समझिए कि कंप्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन बयान की जाती है। मगर इसमें कहीं भी आप देखेंगे तो आपके पास हेयर आफ्टर की प्लानिंग नहीं है। इंग्लिश में फ्यूचर प्लानिंग वर्ड जो है ये रॉन्ग है। जो टीचर्स होते हैं कहते हैं डोंट से फ्यूचर प्लानिंग, से ओनली प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग होती फ्यूचर की है। फ्यूचर जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड है जो प्लानिंग के साथ लगता नहीं है, लेकिन हम ड्यूरिंग द डिस्कशंस कह देते हैं फ्यूचर प्लानिंग, बट प्लानिंग के साथ फ्यूचर का वर्ड कभी लगता नहीं है, क्योंकि जब भी आप प्लानिंग साउंड करेंगे तो उससे मुराद क्या होगी? फ्यूचर। प्रेजेंट की प्लानिंग तो होगी नहीं, प्रेजेंट तो कंटिन्यू है, चल रहा है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है। अब जब हम फीचर की बात करते हैं या प्लानिंग की बात करते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, हर जान देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा। प्लानिंग कल के लिए क्या भेजा। हमारी प्लानिंग सिर्फ यहां के लिए है, हमारी प्लानिंग बात के लिए नहीं है। अकलमंद इंसान तो वो है जो अपनी प्लानिंग को इतनी कंप्रिहेंसिव किस्म के तौर पर लेके मैं यहां रहूं तब भी अल्लाह की रहमत से मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं और कब्र में भी मेरी अच्छी जिंदगी हो और कयामत भी मुझे अच्छा मकाम मिले और अल्लाह की रहमत से मुझे जन्नत मिल जाए। प्लानिंग होती है कंप्लीट, इसको आप कहेंगे एक मुसलमान की बींग अ मुस्लिम, उसको कंप्लीट प्लानिंग करनी है ना। अब आप प्लानिंग करें जनाब मैं दीवारें खड़ी करूंगा, छत तो है ही नहीं, तो ये प्लानिंग दुरुस्त नहीं है। आप रूफ प्लानिंग कर लें, बोले विंडोज तो है ही नहीं, ये भी प्लानिंग सही नहीं है। तो प्लानिंग जब भी करेंगे कंप्लीटली प्लानिंग करेंगे ना, बेस से लेकर रूफ तक की सारी प्लानिंग होगी, वॉल प्लानिंग होगी, विंडोज प्लानिंग होगी, डोर्स की प्लानिंग होगी, एवरीथिंग, हर चीज प्लानिंग में आ जाएगी। मगर हमारी जिंदगी की क्या प्लानिंग है कि हम सिर्फ वन वे वन साइड प्लानिंग कर रहे हैं कि जनाब हमारा ये जो 40-45 ईयर्स 50 ईयर्स तक की जो अगर बिल्फस हमारी लाइफ है तो मैं कंफर्टेबल कैसे गुजारूंगा। मगर इससे पहले मौत आ जाती है, इससे पहले मौत आ जाती है। इस वक्त दुनिया में जो रेशियो ऑफ डेथ है उसमें नौजवानों की मौत ज्यादा है, वो बहुत आगे तक जा ही नहीं रहा है। वो नशे की वजह से, शराब की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी और रीजन से, उसकी वजह से नौजवान या जवान ये 40-45 प्लस हो ही नहीं रहा है, इससे पहले पहले उसकी डेथ हो जाती है। लिहाजा प्लानिंग को स्मार्ट करने की जरूरत है और उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी कैरियर प्लानिंग में अपनी इस्लाम को, अपने दीन को, अपनी कब्र को, अपने हशर को, अपनी नजा को, हत्ता के अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होने तक के सारे मामलों को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाएं। उसमें नमाज है, उसमें दीन सीखना है, उसमें इबादत करनी है, उसमें देख कर दुरुस्त कुरान पढ़ना भी आना चाहिए। आज आपने एक नियत की अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, एक नियत और करवा रहा हूं, देख कर कुरान दुरुस्त पढ़ने आ जाए। मेजोरिटी को नहीं आता क्योंकि इस तरफ तवज्जो नहीं है, देखिए, हमने दुनिया की कोई किताब दुरुस्त पढ़ी या नहीं पढ़ी इसका सवाल नहीं होगा। अगर कुरान दुरुस्त नहीं सीखा तो ये ना दुरुस्त सीखना हमें कब्र में, कियामत में, आजमाइश में डाल सकता है। लिहाजा अपनी कैरियर प्लानिंग में चीजें रखें।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं